ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 79। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने आत्मविचार कर अपना चित्त अल्प भी निग्रह किया है वह संपूर्ण फल को प्राप्त होगा और उसी का जन्म सफल होगा। हे रामचंद्र जी, जिस चित्त में विचार रूपी कण का उदय हुआ है वह अभ्यास से बड़े विस्तार को पावेगा। हृदय में जो वैराग्य पूर्वक विचार उपजता है तो वह बढ़ता जाता है और अविद्या रूपी अवगुणों को काट डालेगा और सब शुभ गुण उसमें आनकर आलय करेंगे। जैसे जल से पूर्ण हुए ताल का सब पक्षी आन आश्रय करते हैं। हे रामचंद्र जी, जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है और निर्मल बोध से यथार्थ दर्शन होता है उसको इंद्रियां चला नहीं सकती। जब तक स्वरूप का प्रमाद होता है तब तक आधि व्याधि दुख होते हैं और जब स्वरूप में स्थिति होती है तब शरीर और मन के दुख वश नहीं कर सकते। जैसे बिजली को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, जैसे पुष्टिकर मेघों को कोई पकड़ नहीं सकता, जैसे आकाश के चंद्रमा को मुष्टि में कोई नहीं पकड़ सकता और मूढ़ स्त्री चंद्रमा को मोह नहीं सकती, तैसे ही ज्ञानवान को कोई दुख वश नहीं कर सकता। हे रामचंद्र जी, जो हाथी मद से मत्त है और जिसके मस्तक से मद झरता है और भवरे उसके आगे शब्द करते हैं उसको मच्छरों के प्रहार और स्त्री के श्वास नहीं छेद सकते, तैसे ही ज्ञानवान को विषयों के राग द्वेष नहीं चला सकते। जिस हाथी के मस्तक से मोती निकलता है ऐसे बलवान हस्ती को नखों से विदारने वाले सिंहों को हरिण नहीं मार सकता, तैसे ही ज्ञानवान को दुख नहीं चला सकता। जिसके पुत्कार से वन के वृक्ष जल जाते हैं ऐसे सर्प को दर्दूर नहीं ग्रास कर सकते, तैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष नहीं चला सकते। जैसे राज सिंहासन पर बैठे राजा को तस्कर दुख नहीं दे सकते, तैसे ही जो ज्ञानी स्वरूप में स्थित है उसको इंद्रियों के विषय दुख नहीं दे सकते। जो विचार से रहित देह अभिमानी है और आत्म तत्व को नहीं प्राप्त हुए हैं उनको विषय उड़ा ले जाते हैं। जैसे सूखे पत्र को पवन उड़ा ले जाता है और ज्ञानवान को नहीं चला सकते। जैसे पर्वत मंद पवन से चलायमान नहीं होता तैसे ही ज्ञानवान सुख दुख से चलायमान नहीं होता। और जो विचार से रहित है वह जगत को सत मानता है। सांसारिक पदार्थों में रत मनुष्य गुरु और शास्त्रों के मार्ग से विमुख है और मूड होकर खाने पीने में सावधान है। वह विचार से शून्य व मृतक है। उसको यह विचार कर्तव्य है कि मैं कौन हूं, यह जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे निवृत्त होगा। इस प्रकार विचार कर संतों के संग और अध्यात्म शास्त्र के विचार से जो पुरुष दृश्य भाव को त्याग कर आत्म तत्व में स्थित होता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जैसे दीपक के प्रकाश से पदार्थ पाया जाता है तैसे ही विचार से आत्म तत्व पाया जाता है। हे रामचंद्र जी, जिसको शास्त्र विचार से आत्म तत्व का बोध होता है वह ज्ञानी कहलाता है और वह ज्ञान ज्ञेय के साथ अभिन्न रूप है। आध्यात्म विद्या को विचार करके आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जैसे दूध से मथकर मक्खन निकाला जाता है, तैसे ही विचार से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञेय जो भीतर है सोई परब्रह्म स्वरूप है और सत्य है, पर असत्य की नाई होकर स्थित हुआ है। ज्ञानवान उसको पाकर तृप्त होता है और जीवन मुक्त होकर अपने आप में प्रकाशता है। जैसे चक्रवर्ती राज्य से आनंद और तृप्ति होती है, तैसे ही ज्ञानवान ब्रह्मानंद में इंद्रियों की इच्छा से रहित छोपता है और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांचों इंद्रियों के विषय में आसक्त नहीं होता। सुंदर राग, तंत्री के शब्द, स्त्रियों के गाने और कोकिल पक्षी और गंधर्व गंधर्वी आदि के जो गायन है उनमें वह आसक्त नहीं होता। अगर चंदन मंदार कल्प वृक्ष के सुंदर फूलों के सुगंध अप्सरा और नाग कन्याओं की नाई सुंदर स्त्रियों का स्पर्श करने और हीरे मणि और भूषण और नाना प्रकार के वस्त्रों में वह बंधनवान नहीं होता। जैसे चंद्रमा सुंदर और शीतल है परंतु सूर्यमुखी कमलों को विकसित नहीं कर सकता, तैसे ही सुंदर स्पर्श ज्ञानी के चित्त को हर्षवान नहीं करता। जैसे मरुस्थल में हंस प्रसन्न नहीं होता, तैसे ज्ञानवान स्पर्श से प्रसन्न नहीं होता और रस आदि में भी बंधनवान नहीं होता। दूध दही घृत आदि रस भक्ष भोज्य लेह्य और चोष्य, यह चारों प्रकार के भोजन और कटु तीक्ष्ण मीठा खारा आदि जितने रस है इनकी इच्छा ज्ञानवान नहीं करते और किसी में बंधनवान नहीं होते। वे आत्मबोध से नित्य तृप्त है और किसी भोग की इच्छा नहीं करते। जैसे ब्राह्मण मुर्गी के मांस के खाने की इच्छा नहीं करते, तैसे ही ज्ञानवान उर्वशी रंभा मेनकादिक अप्सराओं की इच्छा नहीं करते। और चंदन अगर कस्तूरी मंदार आदि वृक्षों के फूलों की सुगंध की इच्छा नहीं करते। जैसे मछली मरुस्थल की इच्छा नहीं करती, तैसे ही ज्ञानवान सुगंध की इच्छा नहीं करते और रूप की इच्छा भी नहीं करते। सुंदर स्त्रियां बाग तालाब नदियां इत्यादि जो रूपवान पदार्थ है तिनकी इच्छा ज्ञानवान नहीं करते। जैसे चंद्रमा बादलों की इच्छा नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान रूप की इच्छा नहीं करते। और की क्या बात है, इंद्र यम विष्णु रुद्र ब्रह्मा समुद्र कैलाश मंदराचल रत्न मणि और कंचन, ये जो बड़े बड़े पदार्थ है उनकी भी वे इच्छा नहीं करते। जैसे राजा नीच पदार्थों की इच्छा नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान पदार्थों की इच्छा नहीं करते। समुद्र और सिंह के गरजने और बिजली के कड़कने का जो भयानक शब्द है उसको भी सुनकर वह भयवान नहीं होते। जैसे शुरमा धनुष का शब्द सुनकर भयवान नहीं होता। ज्ञानवान मतवाले हाथी वैताल पिशाच और इंद्र के वज्र के शब्द सुनते और देखते हुए भी कंपायवान नहीं होते और सत्स्वरूप की स्थिति से वे कभी चलायमान नहीं होते। शरीर को जो आरे से काटिए, खड़ंग से कण कण करिए और बाणों से वेधिए, तो भी कंपायमान नहीं होते। उसको राग द्वेष भी किसी में नहीं होता। यदि शरीर पर एक ओर जलता अंगारा रखिए और एक ओर फूलों की माला रखिए, तो भी वह हर्ष शोकवान नहीं होता। एक ओर खड़ंग धारवत तीक्ष्ण स्थान हो और एक ओर पुष्पशैया हो, तो उसको दोनों तुल्य है। एक ओर शीतल स्थान हो और एक ओर गर्म शिला हो, तो दोनों उसको तुल्य है। एक ओर मारने वाला विष हो और दूसरी ओर जियाने वाला अमृत हो, तो उसको दोनों तुल्य है। हे रामचंद्र जी, चाहे संपदा प्राप्त हो चाहे आपदा हो, चाहे मृत्यु हो चाहे उत्साह हो, इनमें व्यवहार करता भी वह दृष्टि आता है, परंतु हृदय से हर्ष और शोक नहीं करता। उसका मन ज्ञान संयुक्त है और सदा सम रहता है। हे राघव, लोहे के कुल्हाड़े से उसका मांस तोड़िए, नरक में डालिए और ऊपर शस्त्रों की वर्षा हो, तो भी ज्ञानवान भय न पावेगा और न उद्वेगवान और न व्याकुल होगा न दीन होगा। ज्ञानवान इसमें सदा समदृष्टि होकर पहाड़ की नाई धैर्यवान स्थित रहता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान राग द्वेष से रहित है और देह अभिमान से मुक्त हुआ है। उसका शरीर अग्नि में पड़े व खाई में गिरे अथवा स्वर्ग में हो, उसको दोनों तुल्य है और वह हर्ष शोक से रहित है। हे रामचंद्र जी, जिसको स्वरूप में दृढ़ स्थिति हुई है वह चलायमान नहीं होता। जैसे मेरु स्थित है, उसको पवित्र पदार्थ हो अथवा अपवित्र पदार्थ हो, पथ्य हो व कुपथ्य हो, विष हो अथवा अमृत हो, मीठा खट्टा सलोना कड़वा, दूध दही घृत रस रक्त मांस मद्य अस्थि तृण, जो भक्ष भोज्य लेह्य चोष्य भोजन है, वह सब सम है। न इष्ट में वह रागवान होता है और न अनिष्ट में द्वेषवान होता है। यदि एक पुरुष प्राणों के निकालने को सम्मुख आवे और दूसरा प्राणों की रक्षा के निमित्त आवे, तो दोनों को वह आत्मस्वरूप शांत मन और मधुर रूप देखता है और राग द्वेष से रहित है। रमणीय अरमणीय पदार्थों को वह सम देखता है, क्योंकि उसने संसार की आस्था त्याग दी है। बोध स्वरूप में वह निश्चित है। चित्त निरागपद को प्राप्त हुआ है और सब जगत उसको आत्मस्वरूप भासता है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषयों के भोग अपना अवसर नहीं पाते। जैसे दर्पण देखने से प्रतिबिंब भासता है, दर्पण की सूरत रहती है, तैसे ही विषयों में आत्मा देखता है, विषयों की सूरत नहीं रहती। अज्ञानियों को इंद्रियां ग्रास कर लेती हैं, जैसे तृणों को मृग ग्रास कर लेता है। जिसने आत्मपद में विश्रांति पाई है उसको इंद्रिया ग्रास नहीं कर सकती। हे रामचंद्र जी, अज्ञान रूपी समुद्र में जो पड़ा है और वासना रूपी लहरों से मिलकर उछलता और गिरता है, उसको आशा रूपी तेंदुआ ग्रास कर लेता है और हाय हाय करता है, शांति नहीं पाता। जो विचार करके आत्मपद को प्राप्त हुआ है वह विश्रांति को पाकर चलायमान नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत जल के समूह से चलायमान नहीं होता, तैसे ही वह संकल्प विकल्प से चलायमान नहीं होता। जिसकी आत्मपद में विश्रांति हुई है वह उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ है। हे रामचंद्र जी, उसको यह जगत ज्ञान मात्र भासता है और वह उसे सम्मित मात्र जानकर विचार करता है। न किसी का ग्रहण है और न त्याग है। इससे भ्रांति को त्याग कर सम्मित मात्र ही तेरा स्वरूप है। किसका त्याग करता है और किसका ग्रहण करता है? जो आदि में भी न हो, अंत में भी न रहे और मध्य में भासे, उसे ब्रह्मात्र जानिए। इस प्रकार जानकर भाव अभाव की बुद्धि को त्याग कर और निसंवेदन रूप होकर संसार समुद्र से तर जाओ और मन बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करो चाहे न करो, निसंग होंगे तब तुमको लेप न होगा। हे रामचंद्र जी, जिसका मन अभिमान से रहित हुआ है वह कर्म करता भी लेपायमान नहीं होता। जैसे मन और ठोर गया होता है तो विद्यमान शब्द अथवा रूप पदार्थों को प्रस्तुत होते भी वह नहीं जानता, तैसे ही जिसका मन आत्मपद में स्थित हुआ है उसको सुख दुख कर्म नहीं लगता। जो पुरुष अभिमान से रहित है वह कर्मों में सुख दुख भोगता दृष्टि आता है, परंतु वह उसको स्पर्श नहीं करते। देखो, यह बालक भी जानते हैं कि मन और ठोर जाता है तो सुनता भी नहीं सुनता, तैसे ही वह पुरुष करता भी नहीं करता। हे रामचंद्र जी, जिसका मन असंग हुआ है वह देखता है परंतु नहीं देखता, सुनता है परंतु नहीं सुनता, स्पर्श करता है परंतु नहीं करता, सूंघता और रस लेता है परंतु नहीं लेता, इत्यादि जो कुछ चेष्टा है सो करता भी वह अकरता है और उसका चित्त आत्मपद में लीन हुआ है। जैसे कोई पुरुष देशांतर को जाता है तो वह उस देश में व्यवहार कर्म करता है परंतु उसका चित्त ग्रह में रहता है, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त आत्मपद में रहता है। यह बात मूर्ख भी जानता है। जैसा वेग मन में तीव्र होता है उसकी सिद्धि होती है और वही भासता है और नहीं भासता। हे राम जी, सब अनर्थों का कारण संग है। संसार के संग से ही जन्म मरण के बंधन को प्राप्त होता है। इससे सब अनर्थों और संसार का कारण संग है। सब इच्छाओं का कारण संग है और सब आपदाओं का कारण संग है। संग के त्याग से मोक्ष रूप और अजन्मा होता है। इससे संग को त्याग कर और जीवन मुक्त होकर तुम विचरो। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप सर्व संशय रूपी कुहरे के नाश करता, शरत काल के पवन है। संग किसको कहते हैं यह संक्षेप से मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, भाव अभाव जो पदार्थ है वह हर्ष और शोक के देने वाले हैं। जिस मलिन वासना से यह प्राप्त होते हैं वही वासना संग कहता है। हे राघव, देह में जो अहम बुद्धि होती है और संसार की जो सत्य प्रतीति है, तो उस संसार के इष्ट अनिष्ट को राग द्वेष सहित ग्रहण करता है। ऐसी मलिन वासना संग कहती है और जीवन मुक्त की वासना हर्ष शोक से रहित शुद्ध होती है, सो निसंग कहती है। उसकी वासनाएं जन्म मरण का कारण नहीं होती। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को देह में अभिमान नहीं होता और जिसके स्वरूप में स्थिति है, वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है और जो करता है सो बंधन का कारण नहीं होता। जैसे भुना बीज नहीं उगता, तैसे ही ज्ञानवान की वासना जन्म मरण का कारण नहीं होती है। और जिसकी वृत्ति जगत के पदार्थों में स्थित है और राग द्वेष से ग्रहण त्याग करता है, ऐसे मलिन वासना जन्मों का कारण है। इस वासना को त्याग कर तुम स्थित होंगे तब तुम करते हुए भी निर्लेप रहोगे और हर्ष शोक आदि विकारों से जब तुम रहित होंगे तब वीत राग और भय और क्रोध से असंग रहोगे। हे रामचंद्र जी, जिसका मन असंग हुआ है वह जीवन मुक्त हुआ है। इससे तुम भी वीत राग होकर आत्म तत्व में स्थित हो। जीवन मुक्त पुरुष इंद्रियों के ग्राम को निग्रह करके स्थित होता है और मान मद वैर को त्याग कर संताप से रहित स्थित होता है। वह सब आत्मा जानकर कर्म करता है, परंतु व्यवहार बुद्धि से रहित असंग होकर कर्म करता है। वह करता भी अकर्ता है। उसको आपदा अथवा संपदा प्राप्त हो, अपने स्वभाव को नहीं त्यागता। जैसे क्षीर समुद्र ने मंदराचल पर्वत को पाकर शुक्लता को नहीं त्यागा, तैसे ही जीवन मुक्त अपने स्वभाव को नहीं त्यागते। हे रामचंद्र जी, आपदा प्राप्त हो अथवा चक्रवर्ती राज्य मिले, सर्प का शरीर प्राप्त हो अथवा इंद्र का शरीर प्राप्त हो, इन सब में वह सम और आत्मभाव में स्थित होता है और हर्ष शोक को नहीं प्राप्त होता। वह सब आरंभों को त्याग कर नानात्व भाव से रहित स्थित होता है। विचार करके जिसने आत्मतत्व को पाया है वह जैसे स्थित हो तैसे ही तुम भी स्थित हो। इसी दृष्टि को पाकर आत्मतत्व को देखो तब विगत ज्वर होगे और आत्मपद को पाकर फिर जन्म मरण के बंधन में न आओगे। द्वितीय भाग, निर्वाण प्रकरण प्रारंभ। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, उपशम प्रकरण के अनंतर अब तुम निर्वाण प्रकरण सुनो। जिसके जानने से तुमको निर्वाण पद प्राप्त होगा। मुनि नायक ने राम जी से बड़े उत्तम वचन कहे और राम जी ने सब ओर से मन खींचकर मुनीश्वर के वाक्यों में लगाया। राजा लोग भी निस्पंद हो गए, मानो कागज पर चित्र लिखे हैं, और वशिष्ठ जी के वचनों को विचारने लगे। राजकुमार भी विचारते, गर्दन हिलाते और अपने सिर पर हाथ फेरते विस्मय मग्न हो गए। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता के साथ ही आश्चर्य भी हुआ कि जिस जगत को सत्य जानकर वे तल्लीन हो रहे थे वह है ही नहीं। तब दिन का चतुर्थ भाग रह गया और सूर्य अस्त हुए। मानो वशिष्ठ जी के वचन सुनकर सूर्य भी कृतार्थ हुए, उनका ताप घट गया और शीतलता प्राप्त हुई। स्वर्ग से जो सिद्ध और देवता आए थे उनके गले में मंदार आदि वृक्षों के फूलों की मालाएं थीं, उनसे पवन के द्वारा सब स्थान सुगंधित हो गए। भवरे फूलों पर गुंजार करने लगे, झरोखों के मार्ग से सूर्य की किरणें जो आती थी उनसे सूर्यमुखी कमल जो राजा और देवताओं के शीश पर थे वैसे ही सूख गए। जैसे मन से जगत की सत्ता निवृत्त हो जाती है और वृत्ति संकुच जाती है। सभा में जो बालक और पिंजरों में जो पक्षी बैठे थे उनके भोजन का समय हुआ। बालकों को भोजन कराने के निमित्त माताएं भी उठी। जब चौथे प्रहर राजद्वार पर नौबत, नगाड़े, भेरी, शहनाई आदि बाजे बजने लगे और वशिष्ठ जी जो बड़े ऊंचे स्वर से कथा कहते थे उनका शब्द भी नगाड़े और बाजों से दब गया, तब जैसे वर्षा काल का मेघ गरजता है और मोर बोलकर चुप हो जाते हैं वैसे ही वशिष्ठ जी चुप हो गए। ऐसा शब्द हुआ जो आकाश, पृथ्वी और सब दिशाओं में भर गया। पिंजरों में पक्षी पंखों को फैलाकर भड़भड़ शब्द करने लगे, जैसे भूकंप में लोग कांपते और शब्द करते हैं। बालक माताओं के शरीर से लिपट गए। इसके अनंतर मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी बोले कि हे निष्पाप, हे रघुनाथ, मैंने तुम्हारे चित्तरूपी पक्षी को फंसाने के निमित्त अपना वाक रूपी जाल फैलाया है। इससे अपने चित्त को वश करके तुम आत्मपद में लगो। हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है उसके सार में दुर्बुद्धि को त्याग कर चित्त को लगाओ। जैसे हंस जल को त्याग कर दूध पान करता है वैसे ही आदि से अंत पर्यंत सब उपदेश बारंबार विचार कर सार को अंगीकार करो। इस प्रकार संसार समुद्र से तरकर परम पद को प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं। हे रामचंद्र जी, जो इन वचनों को अंगीकार करेगा वह संसार समुद्र से तर जावेगा, और जो अंगीकार न करेगा वह नीच से नीच गति को प्राप्त होगा। जैसे विंध्याचल पर्वत की खाई में हाथी गिरकर कष्ट पाता है वैसे ही वह संसार में कष्ट पावेगा। हे रामचंद्र जी, ये जो मेरे वचन है इनको ग्रहण न करोगे तो वैसे ही नीच गिरोगे जैसे पथिक हाथ से दीपक त्याग कर रात को गड्ढे में गिरता है। जो असंग होकर व्यवहार में विचरोगे तो आत्मसिद्धि को प्राप्त होंगे। यह जो मैंने तुमको तत्व ज्ञान, मन का दमन और वासना का क्षय कहा है इसके अभ्यास से सिद्धि को प्राप्त होगे। यह शास्त्र का सिद्धांत है। हे सभासदो, हे महाराजो, हे राम, लक्ष्मण और भूपति लोगो, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसको तुम विचारो, जो कुछ और कहना है उसे मैं प्रातः काल कहूंगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि हे साधो, इस प्रकार जब मुनीश्वर ने कहा तब सब सभा उठ खड़ी हुई और वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर सब वैसे ही खिल उठे जैसे सूर्य को पाकर कमल खिल उठता है। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र दोनों एक साथ उठे। वशिष्ठ जी विश्वामित्र को अपने आश्रम में ले गए। आकाशचारी देवता और सिद्ध वशिष्ठ जी को नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गए। राजा दशरथ अर्घ्य और पाद्य से वशिष्ठ जी का पूजन करके अपने अंतःपुर में गए। श्रोता लोग भी आज्ञा लेकर और वशिष्ठ जी का पूजन करके अपने अपने स्थान को गए। राजकुमार अपने मंडल को गए। मुनीश्वर वन में गए और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वशिष्ठ जी के आश्रम को गए। फिर पूजा करके अपने गृह में आए। सब श्रोता अपने अपने स्थान में जाकर स्नान संध्यादिक कर्म करने लगे। पितरों और देवताओं की पूजा और ब्राह्मणों से लेकर मृत्यु पर्यंत सबको भोजन कराकर उन्होंने अपने अपने मित्रों और भाइयों के साथ भोजन किया और यथाशक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को साधा। सूर्य भगवान अस्त हुए और दिन की क्रिया निवृत्त हो गई। रात्रि हुई और निशाचर विचरने लगे। तब भूचर, राजर्षि और राजपुत्र आदि जो श्रोता थे वे रात्रि को एकांत में अपने अपने आसन पर बैठकर विचारने लगे। राजकुमार और राजा अपने अपने स्थान पर बैठे। ब्राह्मण, तपस्वी, कुशासन आदि बिछा कर बैठे। विचारते थे कि वशिष्ठ जी ने संसार के उद्धार का क्या उपाय कहा है। वशिष्ठ जी ने जो कहा था उसमें चित्त को एकाग्र कर और भले प्रकार विचार कर सब सो गए। उसमें चित्त को एकाग्र कर और भले प्रकार विचार कर वे निश्चिंत हुए। जैसे सूर्य उदय होने पर कोकाबेली मुन जाती है वैसे ही वे सब निद्रित हुए। परंतु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तीन प्रहर वशिष्ठ जी के उपदेश को विचारते रहे और आधे पहर सोकर फिर उठ खड़े हुए। वाल्मीकि जी बोले कि हे साधो, इस प्रकार सब रात्रि व्यतीत हुई और तम का नाश हुआ। तब राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि स्नान और संध्या आदि कर्म करके वशिष्ठ जी के आश्रम में उपस्थित हुए। हरि हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।